بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: وكان فيه من الزاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقامات کے سلوک کا تیسرا مقام زہد ہے، اس کا بیان چل رہا ہے. آج زہد کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. حضرت ابراہیم بن اسلم رحمہ اللہ نے فرمایا: الزہد ثلاثۃ اصناف. زہد کی تین قسمیں. پہلی قسم شہوات سے پرہیز کرتا ہوں، اسے الزہد الفرض کہا گیا ہے. زہد کا فرض درجہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے زہد اختیار کرے، یہ عوام کا زہد ہے. دوسرا مباح سے پرہیز کرنا، اسے الزہد السلامتی کہا گیا، یعنی وہ زہد جس میں سلامتی ہے، جس سے انسان بچا رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے زہد اختیار کرے. یہ خواص عمر کا زہد ہے. تیسرے قسم فرمایا طیبات سے پرہیز کرنا، پاکیزہ چیزوں سے پرہیز کرنا، اسے الزہد الفضل کہا گیا، یعنی وہ زہد جس میں فضیلت ہے اور یہ حلال سے زہد اختیار کرتا ہوں. یہ زہد العارفین یعنی عارفین امت کا زہد ہے. اس میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے، حرام چیزوں سے بچنا اور مقتبہ چیزوں سے بچنا اور مباح چیزوں سے بچنا. حرام سے تو سب کو بچنا ہی ہے، اس کے بغیر تو تیرا کرتا ہے. چوبے والی چیزوں سے بھی بچنا، کیوں؟ اگر نہیں بچیں گے تو اندیشہ رکھتا ہے کہ انسان حرام میں مبتلا. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ لکل ملک سما وسم اللہ کی مخالف، من حال حول الحما یوسف و یتا. فرمایا جیسے بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، بادشاہوں کے جانور جس جگہ چرتے ہیں وہ شاہی چراگاہ کہلاتی ہے، تو وہاں بادشاہ کے جانور بھی چرنے جائیں، ان کے دستور اور قانون سے جائیں. اگر کوئی دیہاتی، اگر کوئی اور دوسرا کھیتی باڑی والا اپنے جانوروں کو اس کے قریب چرانے لگا، تو جانور تو جانور ہے، اسے اپنی اور سمجھ و سہم نہیں ہوتی. وہ قریبی چراگاہ میں چرتے چرتے آہستہ سے وہ غیر شعوری طریقے پر چاری چراگاہ میں داخل ہو جائے، تو ہوگا یہ ہے کہ بادشاہ کے درباری لوگ اور اس کے فوجی لوگ اس جانور کو بھی پکڑیں گے اور جانور والوں کو بھی گرفتار کریں گے. تو یہ احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مثال کو دیکھ کر اللہ کی طرح چاہیں وہ چاہیں حرام کر دیتی ہے. من حالا فوکل سیما جو شاہی چراگاہ کے اطراف کے قریب چرتا ہے گھومتا ہے اندیشہ ہے کہ وہ اس کے اندر جائے. تو جو حرام کے قریب جو مشتبہ چیزیں ہیں ان میں پڑتا ہے تو اندیشہ رہتا ہے کہ وہ حرام مستقبل. تو اس لیے صبح کی چیزوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. تیسری چیز فرمایا مباح چیزوں سے بھی بچنا. مباح جس کے کرنے میں ثواب بھی نہیں جس کے چھوڑنے میں گناہ بھی نہیں لیکن پھر بھی اللہ والے اس کو چھوڑتے ہیں. یہ اپنے اوپر مظاہرے کے طور پر یہ نفسی کے لیے اپنی تربیت کے لیے جو بھی ہو. فرمایا مالداری کے باوجود جو چنا سیوا میں احمد میں سمبل رسموں میں آتے کسی نے ایک اچھا سوال پوچھا معلوم کلے پور مدرادی دا ایسا ممکن ہے کہ انسان کے پاس مال بھی ہو اور وہ راضی بھی ہو. آج اگر ہمارے زمانے میں ہم کو موٹا بھٹا کر کھانے کو کہا جائے اور مجاہدے کرائے جائیں تو دس دن کی نیت سے آنے والا وہ ایک کے بعد جو صفر ہے اس کو ہٹا کر ایک ہی دن میں سلام کر کے حضرت کیا کرایا ماں آپ نے ایک دن بڑی اچھی مہمانی کی اللہ آپ کو اچھا رکھے میں ذرا چلتا بستا ہوں ان شاء اللہ سلامت اگر عمر میں سلامت کی سے باقی رکھا تو آئندہ کر دیکھیں گے. تو موٹا بھاٹا الحمد للہ آج خان خواہوں میں بھی نہیں سنایا اس میں یہ طبیعت نے اس کو بتایا بلکہ ہماری گندی تو ماشاء اللہ ایسا نام کماری تھی. اس گندی کے واسطے بہت سے لوگ آ رہے ہیں میرے آئے ہیں جو بھی آئے ان کا آنا مبارک ہے. اب ہم غریبوں کا در بھی کھلا ہے. تو موٹا گھاٹا آج کل کے زمانے میں لوگ برداشت نہیں تھوڑی دیر پنکھا بند ہو بدل کے اللہ کمزوروں کی طبیعتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. ہماری چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو قبولیت سے آواز دے اس کا طرف. یہ ہمارے آج کے حال کے مطابق سوال ہے. اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کے پاس مال بھی ہو اور اس کا نام غازی تو مسلم بھی ہو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تو بہت زیادہ مال ہونے سے اگر بہت زیادہ مال ہونے سے بندے کا دل آپے سے باہر نہیں ہوتا اور نقصان ہونے سے اس کے اندر مایوسی نہیں آتی تو مال کے باوجود وہ انسان ظاہر ہوتا ہے. مال آئے تو آپے سے باہر نہیں ہوتا پھول جاتا نہیں ایک دم بڑپن نہیں دکھاتا بڑائی نہیں جلتا دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا اور مال میں نقصان ہو جائے تو اس کو مایوسی نہیں آ جاتی اس کی طبیعت نہیں بول جا جاتی. فرمایا سب نعمتوں کے باوجود اگر تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں کہ اس کی وجہ سے تم شریعت کے خلاف کام کرتے رہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں تم ظاہر کہلاؤ گے. اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ بندہ ننگا رہے بھوکا رہے پیاسا رہے بے گھر رہے. شریعت ایسی ہوتی تو دنیا کے لوگ اسے ناقابل عمل قرار دیتے. مومن سادھو نہیں ہوتا. مومن کے لیے یہی تو چانس ہے کہ وہ رکھتا بھی ہے دنیا میں اور دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے مگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے غافل بھی نہیں ہوتا. विश्रित ने हारिफ रहीम अल्लाह ने फरमाया, जुहद दुनिया छोड़ देने का नाम नहीं, बेशक जुहद तो अल्लाह ताला के सिवा हर चीज से बेपरवाह होने का नाम है। तो दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के सिवा हर चीज से बेपरवाह होना, अल्लाह की परवाह होना, ला रबूबी इल्लल्लाह, ला मंसूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह को छोड़ नहीं सकते, दूसरी छोड़ चीजों को छोड़ सकते हो। दलील दे रहे हैं, देखो दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के बादशाह थे और अल्लाह के नजदीक वो दोनों जाहिरीन में फिर थे। तो दुनिया के बादशाह भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उनका जाहिरों में शुमार है। अब हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु की जिंदगी कैसी थी, कुछ वाकयात का जिक्र फरमाया। जनाब हजरत अली रज़ियल्लाहु और हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु, ये दोनों फकीर थे। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आमिली ने ज़कात में कुछ बातें सुनाई कि फला ज़कात नहीं देते, फला ज़कात नहीं देते, तो बस सहाबा का नाम जमाया। उनसे पूछा गया या उनके हालात जब मालूम किए गए तो उन पर ज़कात ही क्या नहीं, फर्ज ही नहीं है तो देंगे क्या? तो फरमाया गरीब थे, अगर गली रजी अल्लाह के पास माल आता था तो खर्च कर देते, सारी उम्र उनको ज़कात देने का मौका ही नहीं था। भाई निसाब पूरा साल पास रहे तो ज़कात छोड़ी, सोचिए कि पूरी जिंदगी ज़कात देने का मौका ही नहीं आया, जो आता था अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते। सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु के हालात ज़ाहिर में गुर्बत के हैं मगर ज़ाहिरीन में क्या है। तो ये गरीब सहाबा ये भी ज़ाहिरीन है, अब अमीर सहाबा है लेकिन वो भी ज़ाहिरीन है। वो कैसे? हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाहु अपने वक्त के उमरा में थे और उनका नाम भी ज़ाहिरीन में शामिल है। हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाहु के पास एक दफा ऐसे वक्त में गल्ला है, ये देखो सौदा कैसा कर रहे हैं। जब मदीने तैयबा और उसके अतराफ में ताहत पड़ा हुआ था, मुख्तलिफ ताजिर आए कि हजरत आप ऐसा करें कि यह गल्ला हमें बेच दें, ज्यादा नफा ले लें, हमारे साथ बिजनेस करें। उन्होंने क्या कहा, क्या दोगे? अब बीवी भरी। ताजिरों ने कहा कि हम आपको दुगना प्रॉफिट देंगे, डबल, एक रुपए के बदले दो रुपए देंगे। कहने लगे नफा थोड़ा है। उन्होंने कहा अच्छा, एक के बदले तीन दे। कहा नहीं थोड़ा है। अच्छा चार ले लेंगे। तो फरमाने लगे थोड़ा है। अब ताजिर लोग सर पकड़ के बैठे, यही क्या है, यही अच्छा हुआ, इनसे अच्छा वास्ता पड़ा। वो सारे ताजिर सर पकड़ कर बैठ गए कि अजीब बात है, इस वक्त हम इतना नफा दे रहे हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता। ये कहते हैं कि नहीं, इससे भी ज्यादा नफा चाहिए। तो एक ने पूछा कि जी आप चाहते क्या है? उन्होंने फरमाया कि आप मुझे जो नफा दे रहे हैं वो बहुत थोड़ा है, मेरे पास एक ग्राहक है जो इससे ज्यादा नफा देता है। अब वो चक्कर में पड़ गए, वो कौन रहेगा? वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन, मल्टी मिलियनर, वो कौन से बड़े? वो तो उन लोगों की आंखें खुल गई जी कि कोई हमसे ज्यादा नफा दे रहा है। 100 के बजाय 400, 1000 के बजाय 4000, इतना प्रॉफिट कोई दे रहा है? उन्होंने कहा कि हाँ। पूछने लगे कौन? कहने लगे मेरा परवरदिगार, एक के बदले कम अज कम मुझे 10 गुना देता है। आज आपने हुक्म दिया, जितना काफिला था इन्हें गल्ले से लदा हुआ, यानी 100 से ज्यादा गल्ले के ऊंट थे, फरमाया सबको मदीने के गुनाहों में तकसीम कर दो, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, सुनने वाले के बावजूद जाहिर थे। तो हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम उनकी हर शान निराली, हर हालत में वो जाहिर थे, आबिद थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, जिन्होंने बादशाही में फकीरी की, इस उम्मत में ऐसे राजदीन गुजरे हैं जिन्होंने एक वसी सल्तनत पर बादशाही के बावजूद फकर की जिंदगी अख्तियार की। हजरत उमर के अलामों में जब खलीफा वक्त थे तो एक मरतबा हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा रज़ी अल्लाहों की मजलिस में यह जिक्र छिड़ा कि अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल से जो वजीफा लेते हैं वो उनके गुजर बसर के लिए थोड़ा है और उन्हें अपने लिए वजीफे में इजाफा करना चाहिए। देखो तो दूसरे फिक्र कर, आज हर एक भी अपनी फिक्र कर रहा है, मौके मौके से वजीफा बढ़ाने, तनख्वाह बढ़ाने, जरा सैलरी जम्प को चकर हुआ है, जरा क्लिक को चकर हुआ करो, ये सब आदमी की सिला रखते हैं। तो ये हजरात से अमीर मोमिनीन के वजीफे की फिक्र कर रहे हैं, ज्यादा है घटे नहीं, कम है घटे नहीं, मगर उनकी खिदमत में यह तजवीज बेतौर करे, बिल्ली के गले में घंटी गोद खाते वह जलाल जबरूत वाले उनसे जाकर कहें किसकी हिम्मत है। फैसला यह हुआ कि हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी और उम्मुल मोमिनीन में से थी, इनसे दरखास्त की जाए। अब बेटी बेटी लाड़ी नहीं होती है, बेटी की तरह से बातें ताकि वो अपने वालिद वालिद से बात करे। ये हजरत इनकी खिदमत में तशरीफ मिली और अपनी वंशा बयान की और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को यह पैगाम अपने वालिद तक पहुंचाने पर तैयार किया। अब देखो, और साथ ही ये दरखास्त भी की कि अमीर मोमिनीन से हमारे नाम ना बताना, ये लोग कहते थे उधर से पहला सवाल ही होगा, बोल बोले हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की है इस पिटीशन के दाखिल करने, उस दरखास्त के पेश करने पर फौरन ये किसकी तरफ से है ये सवाल। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से तस्वीर का तज़किरा किया तो आपके चेहरे पर गुस्से के आसार बने हुए और आपने फरमाया कि मुझे मशवरा देने वालों के नाम बताओ। अब उनका थोड़ा हंटर लटका रहता है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि पहले आपकी राय तो मालूम हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया, हफ्सा अगर मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो मैं उनके चेहरे पर तू ही बता कि तू सलाह से कम का उत्साह से उनका लिबास तेरे घर में क्या था। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि दो कपड़े शुरू सलाह से कम जुमे के दिन या किसी वक्त के आने पर पहुंचे थे, ये रंगीन जरा किस्म के कपड़े थे। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, कौन सा खाना तेरे घर का उमदा से उमदा था। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमारे यहाँ खाना जौ की रोटी होती, एक मरतबा हमने गरम गरम रोटी पर घी की तिलचट डाल दी, उसको एक मरतबा शुरू से लाचकों के सामने जब पेश किया तो आप खुद भी उसको मजे लेकर मत फरमाते थे और दूसरों को भी खिलाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, कौन सा बिस्तर सबसे उमदा था जो तेरे यहां बिछाते थे। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में उसको चौरा करके बिछा लेते और सर्दी में आगे को बिछा लेते और मक्खियां आते तो ओढ़ लेते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हफ्सा इन लोगों तक ये बात पहुंचा दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से एक अंदाजा मुकर फरमा दिया और आखिरत की उम्मीद पर किफायत फरमाई। मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात करूंगा, मेरी मिसाल और मेरे दो साथी हुजूर में खत्म हो चुकी है, चाहे बड़े पैमानों की मिसाल उन तीन शख्सों की सी है जो एक रास्ते से चले। पहला शख्स एक टोटा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया, दूसरे ने भी पहनने की इस्तीफा की और उसी तरह रास्ते से चला और वो भी पहनने के पास पहुंच गया। तीसरे शख्स ने चलना शुरू किया, अगर इन दोनों के तरीके से चलेगा तो उनके साथ जाएंगे और अगर उनके तरीके के खिलाफ चलेगा तो कभी भी उनके साथ नहीं। रास्ता बदल गया तो मंजूर भी बदल जाए। अल्लाह बढ़िया मदद उम्र सुहा अल्लाह। आज तो लोग तनख्वाह में जाने के लिए दुआएं मांगते, यहां साथी इतराज कर रहे हैं इंक्रीजमेंट के इजाफा ले रहे और वो न सिर्फ ठुकरा रहे हैं बल्कि मछुआरा देने वालों से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। एक मरतबा आपको जुमे की नमाज के लिए तशरीफ लाने में देर हो गई तो तशरीफ लाकर माजरत फरमाई कि मुझे अपने कपड़े धोने में देर हो गई और इन कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा मौका भी आया कि आप कुत्ता पड़ रहे और आपकी जिंदगी में 12 पड़े जिनमें से एक चमड़े का था। यह उस शख्स के फख्र का आलम है जिसने दुनिया के बादशाह जिससे दुनिया के बादशाह काम ले। ऐसे ही उम्र खानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहम अल्लाह की जिंदगी देखी थी उसको भी नजर पेश फरमाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहम अल्लाह जिनको उमर खानी के लकब से भी याद किया जाता था, वक्त के अमीर मुमिनीन थे मगर जाहिर थे। इनकी अजी जिंदगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहम अल्लाह, उनकी पूरी जिंदगी जुहद की दुनिया का रोशन नमूना है। उनके हालात जिंदगी में आता है कि खलीफे के अहदे पर फाइल होते ही पुरतकल्लुफ सरकारी सवारी को पीछे हटा दिया और फरमाया मेरा इन गाड़ियों से क्या वास्ता, मेरे लिए मेरा हस्तर ही काफी। फिर महावीरीन की भी छुट्टी कराई, सिक्योरिटी भी हटा दी और फरमाया मेरा इनसे क्या था, मैं उम्मत मुस्लिमा का एक फर्क हूं, वैसे ही सुबह शाम जिंदगी बसर करता जिस तरीके से दूसरे मुसलमान बसर करते। उनकी बीवी फातिमा बिनत अब्दुल मलिक खलीफा की पोती, खलीफा की बेटी, खलीफा की बहन, कितनी नस्बत है। इनके दादा खलीफा, इनके वालिद खलीफा, इनके भाई, उन्होंने बहुत आयश और इज्जत की जिंदगी गुजारी। लेकिन जब उनके शौहर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जो लिबास और जेवर तुम्हें तुम्हारे बाप ने मेरे नजदीक वो बैतुल माल से बसत शुदा नाजायज माल है, या तो तुम ये सारी चीजें बैतुल माल को लौटा दो वरना मुझसे अला निकाल होगा। हजरत के साथी मैंने फैसला करने में एक मिनट न लगा और जो कुछ उन्हें अपने बाप के जहर में मिला था सब बैतुल माल में लौटा। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह को अमीर मुमिनीन होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का शिद्दत से एहसास था और उन्होंने अपनी अहलिया से हुकूक माफ करा लिया। सोचे खलीफा बनने के बाद अशीब तकलीफ जो है ये जो दिवाली ताल्लुक था उठा नहीं होता माफ करा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में खर्च कर सके। ऐसे वक्त में जब बादशाहों के पास बांदियों से हरम भरे होते हैं हर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अपनी अहलिया के पास भी बहुत कम आया। एक मरतबा अपनी बेटियों से मिलने गए तो देखा कि जो बेटी मिलने आती है वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अब बाप से बात करते हैं मुंह पे हाथ रखकर बात करें जरा दिखने लगता है। जब सबों दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि अमीर मुमिनीन की बेटियों ने इस दिन सिर्फ दाल और प्याज खाए। और उसकी मजबूत से शर्मिंदा होकर मुंह पर हाथ रखे। अलकरा तो राज पिता ने ये वाक्य आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह को जब ये मालूम हुआ तो वो रो पड़े और फरमाया, क्या तुम इस पर राजी हो कि तुम अनवा और अकसाम के खाने खाओ, यानी दाल और प्याज को अनवा और अकसाम के खाने बताए और तुम्हारा बाप जहन्नम में जाए। ये सुनकर उनकी बेटियां भी रो पड़ी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने एक मरतबा अपनी एक बेटी को आवाज देकर अपने पास किसी काम से बुलाया, ये देखो, लेकिन वो ना आई। अब शरीफ खरा नहीं, दीनदार बेटियां जवाब ना दे ना आए तो ताजुब लगता है। दोबारा आवाज दी लेकिन उसने फिर जवाब न दिया, इससे उनको थोड़ी नागवारी हुई और उन्होंने अपनी अहलिया से पूछा कि क्या बात है, बेटी क्यों नहीं आ रही। तो उनकी अहलिया ने जवाब दिया कि बच्ची की तलवार जो है वो फट गई और वो दूसरे कमरे में उसे सी रही, दूसरी कोई तलवार नहीं थी। तो जब तक सी नहीं लेती इसके बगैर वाल नहीं थी, इसलिए देर हो रही। ये खलीफा की घर का है। इस वक्त जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, उनकी जाती मिलकियत का यह हाल था कि बावजूद शौक के हज का खर्च उनके पास नहीं था। एक बड़ी खानदानी मालियत उनके हिस्से में आई तो साथी ने मुबारकबादी दी और कहा कि हज का सामान आ गया। तो फरमाया कि हमने इस माल से बहुत दिनों फायदा उठाया है, अब ये मुसलमानों का हक है। ये कहकर वो सारे माल को बदलना उठा देते। तो ये थे हमारे इस्लाम, इनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है। हम अपनी ताकत पर कोशिश करें, घर बार में खाने पीने में रहन सहन में कपड़ों में किफायत तैयारी का मामला करें, ये भी समझ में जरूरत है। किफायत तैयारी फरमाया जो दरमियानी जिंदगी गुजारे में वो कभी फकीर आला मानी को तब सका। तो किफायत तैयारी जितनी ज्यादा उतने पर फैलाए, तरह तरह लेकर ठाट बाट करें कि क्या जिंदगी, ये दूसरों के मन पर करना हुआ। आज चूरी कर्ज लेने को लोग जरा बराबर भी सोचते, लाखों करोड़ों का कुछ चूरी कर्ज कारें बहारें और बंगले रोटी रोटी ये नजारे नजर आ रहे हैं, लेकिन मन उसका नहीं। इस तरह की चीजों से बचे, हमारी किसान जितनी है हमारी ताकत जितनी उसके हाथ से जिंदगी गुजारे, ये जमाने में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम तो पता हो, इसलिए कभी भी ध्यान रखें कर्ज जो है जरूरत को पूरा करने के लिए लेने की तबीयत नहीं जा सकती। मतलब घर में किसी की तबीयत खराब है, इलाज कराना जरूरी है, लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है तो जरूरी किसके वास्ते किसी से कुछ कर्ज ले लें, इसकी तो इजाजत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकाम पर कर्ज वैसे आखिर वक्त में जब दुनिया से पर्दा फरमाया तब भी एक यहूदी से आलोचना करना कर्ज लिया। ये सब चीजें जरूरत पर कर्ज लेना, लेकिन एक है मालदार बनने के लिए कर्ज लेना। तीन कारखाने हैं तो चौथे कारखाने के लिए कर्ज ले, मकान शादी है तो दूसरा मकान बनाने के लिए लोन ले, और नाम पड़े सुनहरे नाम हाउस लोन एजुकेशन लोन और फलान लोन फलान लोन। अब दुनिया में भी ऐसी पॉलिसियां ऐसे हो अल्फाज ये प्यारे अल्फाज से उसको भेजता है, खुद नहीं तैयार होती थी, होम मिनिस्टर जो घर की रहती है वो तैयार करा देती है, जरूर उनकी जाल में इंसान फंस जाता है। क्या एक मरतबा मुझे फोन आया, अब वो फोन नंबर बताया आपके फोन नंबर पर आपको एक गिफ्ट हम भेज करना चाहते हैं, इसलिए आप फला होटल पे फला तशरीफ लाइए, आपका एजाज किया जाएगा, आप फैमिली के साथ आइए। अब यहां से जो है वो खतरे की घंटी शुरू हुई, अरे भाई आपको एजाज करना है, कुछ देना है तो आप भेज दीजिए, पोस्टे भेज दीजिए, किसी के जरिए से भेज दीजिए। खैर हमको बुला रहे हैं, अब हर रात को भेजना जरा जब विश्वास हो रहा है तो आदमी को बुलाए तो ठीक है, बुलाए और दे दिए सुना जगह पर, लेकिन ये कि फैमिली को साथ नहीं कराओ, ये कठोर कहां से बैठ रहा है, ये क्यों बुलाया जा रहा है। अब ये चक्कर इस तरीके से है कि वो बुलाएंगे आपको एक होटल में बिठाएंगे, दो चार रुपए की चीजें खिलाएंगे खिलाएंगे कुछ देंगे बेहतर, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, बात करते करते एक स्कीम आपके सामने पेश कर देंगे और फिर ऐसी मीठी जुबान में प्यार अंदाज में आपके बच्चे भी हैं उनका भी सोचना नहीं क्या, उनके लिए कुछ करना नहीं क्या, उसके लिए अगर ये स्कीम में जमा हो गए तो बच्चों का भी मसला हल होगा नहीं क्या, आपका भी बहुत कम होगा नहीं क्या। अब जरा सोचो, कोई कंपल नहीं कर रहे हैं, अल्फाज भी देखिए हम कोई जबर और जबरदस्ती नहीं कर रहे, एक ऑप्शन है, एक ऑफर है, एक जो है चॉइस है, आप जरा सोच लीजिए। अब ये बोल कर जो है मंत्र पढ़ के चला जाता वो चाय लाने के लिए, अब क्या मंत्र शुरू हो जाता, अब उसे मर्द कितना भी मजबूत रहे जमात में जाकर या नमाज की सोबत में रहकर मसाइल जानते हुए, वो जरा लोहा ढांट भी रहे तो उधर होम मिनिस्टर जो है उनकी कीली ऐसी शुरू होती, अटैक ना बोलिया, बराबरी ना बोलिया, चार अलग बोलिया, हमारे भी बच्चियां नहीं क्या, उनका भी सूचना नहीं क्या, क्या आपका रिसाज रहे तो कहता, हव हो बोल रहे तो कहता, उठना नहीं क्या बच्चियां ले ले क्या होगा, और खेलता नहीं गए शुरू वहां से। अब यहां एक महाज शुरू हो जाता है, सुबह जवाब क्या, अब होते 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 वो मर्द बेचारा ऐसा हो जाता है कि उसका माइंड सेटअप जो है ऊपर नीचे हो जाता है, समझे भाई, अब आनंदता से जो कुटी में पड़ जाता है। तो मदारी की कुटी में जैसे बहुत किस्म के सांप रहते हैं वैसा जो है ये जाल में पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, और तुम्हारा मकर बड़ा जबरदस्त है तो उसकी जान में पड़ जाए। तो इस तरीके से आज बहुत सारी चीजें पेश की जा रही है, तो आज के जमाने में इन चीजों से बचकर अपने आप को रखना, ये बहुत बड़ा फतवा है उस जमाने, ऐसी चीजों से अपने आप को बचाकर रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अपनी ताकत रख रखें, उतनी ही जितनी जैसे से उतना ही काम करें, अल्लाह से मदद मांगें। हाँ जरूरत की चीजें उसको फरोख करना पड़े, आज इंसान जिसको फरोख करने की क्या रखता है लेकिन उसी को गिरवी रखने को सोचता ही नहीं, बिल्कुल बहुत आसानी से जाकर गिरवी रखते, जरूरत पर जेवर भेज दें लेकिन गिरवी को रखकर सुख पर बचा नहीं था, एक वक्त आता है कि वो जेवर भी डूबता है। क्या हम तो डूबे और उसके ऊपर फिर और मजीद जो है इतना बनना उतना बनना रोज रोज बोलते हैं, बस हर बनना इतना सुख बनना पड़ता है, क्या जिंदगी। इसलिए अपनी हदों से बढ़कर अपनी ताकत से बढ़कर इंसान जब काम करता है तो इस किस्म की चीजों में बनता है, अल्लाह का समझ होता है और शायद भी ราสุดาวันเดียวกันพูดเรื่องนี้นะاللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا حفظ الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكاء ويا منجي الغرقاء ويا محسن يا مجمل يا معين أنت وحدك لا شريك لك أنت وحدك لا شريك لك يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذكر من لا ذكر له يا حرز الزعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء لا العالمين هم عاجز عاجز ومسكين بدے گنہ گار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں گناہوں کا بوجھ لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں رب کریم ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ آپ کے سامنے آئیں اے اللہ یہ حاج اس قابل نہیں کہ اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکیں اے اللہ آپ نے توفیق دی ہے اللہ ہم نے آپ کے سامنے اے اللہ عبادت کی ہے اللہ آپ کے سامنے اپنے ماتھے اٹھے گا اے اللہ آپ نے توفیق دی تو اللہ ہم آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم اللہ قبول فرمائیں گے رب کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں گے اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ اپنا فضل فرمائیے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرمائیے اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں اے اللہ جسے آپ کے سامنے پیش کر سکیں نہ ہمارے پاس کوئی نماز ہے اے اللہ نہ ہمارے پاس کوئی تلاوت ہے اے اللہ جسے آپ کے سامنے پیش کر سکیں رب کریم اے اللہ آپ کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے اے اللہ آپ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے اے اللہ ہماری عبادتوں سے کچھ نہیں ہوتا اے اللہ ہم قابل قبول نہیں ہے اے اللہ بالکل قابل رد ہو چکے ہیں رب کریم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ قبول فرما لیجیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ قابل نہیں پھر تو قبول فرما لیجیے اے اللہ پھر تو قبول فرما لیجیے رب کریم امت کی حالت پر رحم فرمائیے اے اللہ آج امت اے اللہ گمراہی کے دہانے پر چل رہی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کو صحیح رہبر پیدا فرمائیے اے اللہ امت کے لیے صحیح رہنما پیدا فرمائیے اے اللہ امت کو امت کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلائیے اے اللہ امت کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلائیے ضلالت و گمراہی کو ختم فرمائیے اے اللہ ہم برے بہت گندے ہو چکے ہیں اے اللہ ہم کسی کی نہیں مانتے ہیں نہ باپ کی مانتے ہیں اے اللہ نہ ماں کی مانتے ہیں نہ اپنے استاذ کی مانتے ہیں نہ پیر و مرشد کی مانتے ہیں اے اللہ مانتے ہیں تو بس اپنے نفس کی مانتے ہیں اے اللہ جو سب سے بڑا دشمن ہے رب کریم ہمارے اندر ماننے کی صفت پیدا فرمائیے اے اللہ ہم کو اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرمائیے یا اللہ یہ رحمت کا اشرہ گزر چکا ہے یا اللہ آپ کی رحمتیں یا اللہ تام ہم پر نازل فرمائیے یا اللہ جو کچھ اللہ اس میں ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوں جو کچھ ہم سے غفلت ہوئی اللہ اسے معاف فرما اے اللہ جو باقیہ روزے اور جو باقیہ ایام ہیں اے اللہ اسے پورے طریقے سے کام میں لانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پورے طریقے سے وقت کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ غفلت کو ختم فرمائیے اللہ کی غفلت کو ختم فرمائیے اے اللہ ایک سوئی پیدا فرمائیے اے اللہ آپ کا دھیان پیدا فرمائیے اے اللہ آپ کی توجہ عطا فرمائیے اپنی معرفت نصیب فرمائیے اپنی محبت دے دیجیے رب کریم ہم آپ کی بھکاری ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ آپ کا در اللہ کھلا ہوا ہے اے اللہ آپ کے سامنے نہ مانگے تو اللہ کس کے سامنے مانگے اے اللہ آپ سے اپنی حاجت نہ سنائیں تو اللہ کس کے سامنے سنائیں کون ہماری سنتا ہے اے اللہ کون ہماری سنتا ہے اللہ سب مطلب ہی ہے اللہ کسی کے سامنے اللہ ہم ہاتھ پھیلائیں اپنے قریب اپنے پھول و کرم
سے ہمارے اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی اللہ گزارش قبول فرمائے گی. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائیے. رب کریم ہماری حالت پر رحم فرمائیے. اللہ جی ہماری حالت پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہم چاہے نہ چاہے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لی تھی. یا اللہ ہم چاہے نہ چاہے ہمارے سر کے بال پکڑ کر ہم سے دین کی خدمت لے لی تھی. رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سے دین کی خدمت لے لی تھی. رب کریم اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے, ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائیے. رب کریم ہمارے تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. رب کریم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہر عبادت میں لذت پیدا فرمائیے. اے اللہ عبادت میں حلاوت پیدا فرمائیے, ذکر میں کی چاشنی عطا فرمائیے. رب کریم اے اللہ ہر عبادت کو کامل حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس خانقاہ کو قبول فرمائیے, یہاں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرمائیے. یا اللہ اس کے جو کام باقی رہے ہیں اللہ اسے اپنے خزانے غیب سے پورے فرمائیے. یا اللہ اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں سب پورے فرمائیے. یا اللہ ہماری ضرورت ہے اللہ آپ کے ہیں نہ آپ کے کام کی نہیں اللہ, یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں اللہ.